नमस्कार। आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं। नाम है आत्मा की भूख, उपासना। तो समझेंगे कि वंदनीय माता जी उपासना को आत्मा की एक बुनियादी जरूरत, एक भूख क्यों मानती है, और ये ईश्वर के पास होने का, उनकी समीपता का असल मतलब क्या है।
जी बिल्कुल, और कोशिश ये रहेगी कि हम वंदनीय माता जी के ही विचारों से समझें कि उपासना का असली अर्थ क्या है। ये जो समीपता की बात है, समर्पण का महत्व है, और हाँ, उससे फिर मिलता क्या है, लाभ क्या है, क्योंकि ये सिर्फ कोई मतलब पूजा पाठ की क्रिया नहीं है, ये आत्मा की तृप्ति का एक सीधा रास्ता है।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वंदनीय माता जी का कहना है कि जैसे शरीर को खाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आत्मा को उपासना चाहिए। ये कोई मतलब दिमागी कसरत या ज्ञान की प्यास जैसी चीज नहीं है, ये अलग है। ये आत्मा की अपनी भूख है। और उपासना, बहुत सरल शब्दों में कहें तो ईश्वर के पास बैठना, उनकी नजदीकी महसूस करना।
हाँ, और ये पास बैठना सुनने में शायद साधारण लगे, पर ये है नहीं। इसका असर बहुत गहरा होता है। माता जी एक उदाहरण देती हैं, जैसे आप किसी बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के पास बैठते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो आपका भी सम्मान बढ़ जाता है ना। ठीक वैसे ही जब आप उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास बैठते हैं, उनके समीपता में होते हैं, तो भक्त का आध्यात्मिक कद, उसका महत्व, वो कई गुना बढ़ जाता है। वो भक्त फिर धीरे धीरे मतलब ईश्वर के गुण अपनाने लगता है, एक तरह से कहें तो उनका ही रूप बनने लगता है। वो राजा और ब्राह्मण वाली कहानी है ना, वो इसी बात को दिखाती है कि राजा की समीपता से ब्राह्मण का सम्मान और सामर्थ्य कैसे बढ़ गया था।
अच्छा, तो ये समीपता से फिर विलय तक का सफर कैसे होता है? माता जी के उदाहरण तो बड़े अच्छे हैं। जैसे वो कहती हैं कि गंदा नाला भी अगर गंगा में मिल जाए तो वो गंगा ही बन जाता है, पवित्र हो जाता है। या जैसे कोई छोटी सी नदी सागर में मिलकर विशाल हो जाती है।
हाँ, ये विलय, यानी अपना जो छोटा सा मैं है उसका उस विराट ईश्वर में मिल जाना। पर सवाल है कि होता कैसे है? तो इसका जो आधार है वो है समर्पण। समर्पण का मतलब है खुद को पूरी तरह से बिना कुछ बचाए ईश्वर को सौंप देना। जब भक्त इस भाव से जुड़ता है ना, तभी वो ईश्वर की दिव्यता को महसूस कर पाता है, उसमें कह सकते हैं समाने लगता है। ये सिर्फ पवित्र होना नहीं है, ये अपनी जो सीमित पहचान है ना, उसको खोकर उस असीम में मिल जाना है। ये रूपांतरण है।
समर्पण, ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है। माता जी ने इसे समझाने के लिए एक विवाहित स्त्री का कितना सटीक उदाहरण दिया है कि कैसे विवाह के बाद वो पति को समर्पित होती है, अपना पिछला जीवन, पहचान सब पीछे छोड़ देती है, और फिर वो पति के घर, उसके वैभव, उसकी पहचान सबकी अधिकारिणी बन जाती है। जैसे डॉक्टर की पत्नी को लोग डॉक्टरनी कहने लगते हैं, या सेठ की पत्नी सेठानी बन जाती है, उसने तो कोई डिग्री नहीं ली।
सही कहा, ये समीपता और समर्पण से मिली पदवी है। ये उदाहरण दिखाता है कि समर्पण से मिलता क्या है। लेकिन एक और पहलू है इसका, वो ये कि समर्पण में पहले देना होता है। जैसे कठपुतली है या पतंग है, उनकी अपनी कोई मर्जी, कोई शक्ति नहीं होती है, वो तो पूरी तरह नचाने वाले या उड़ाने वाले के हाथ में होती हैं। तो जब हम अपने जीवन की डोर उस ईश्वर को सौंप देते हैं, तब वो हमें चलाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और बदले में अपनी कृपा, अपने अनुदानों से हमें भर देते हैं। तो समर्पण वो दरवाजा है जिससे भक्त ईश्वर के गुण और सामर्थ्य पा लेता है। पहले सौंपना, फिर पाना।
और ईश्वर की कृपा पाने के लिए कोई मोलभाव नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत उदार है, वो तो बस देने को तैयार बैठे हैं। जैसे मीरा थी, उन्होंने तो ईश्वर को अपना मान लिया, मोल ले लिया एक तरह से। द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण कैसे दौड़े चले आए, गजराज की रक्षा की। कितने ही उदाहरण हैं।
बिल्कुल, विभीषण और सुग्रीव को देखिए, ईश्वर की समीपता मिली, सहायता मिली और राजा बन गए। अर्जुन का रथ तो स्वयं कृष्ण ने हांका जब वो उलझन में थे। तो माताजी का संदेश एकदम साफ है, अगर भक्त में सच्चा समर्पण है तो ईश्वर की मदद जरूर मिलती है, अवश्यंभावी है। और ये कृपा कोई मांगने वाली चीज नहीं है, ये तो ऐसे मिलती है जैसे भेड़ के शरीर पर ऊन अपने आप उगाती है, उसे मांगना नहीं पड़ता।
यहाँ एक बात और समझने वाली है कि उपासना का मतलब सिर्फ मंदिर में बैठना या माला जपना ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण कितना अच्छा है, उन्होंने तो कोड़ी की सेवा में ईश्वर की उपासना देख ली थी।
बिल्कुल सही, यही तो सच्ची उपासना का मर्म है। हनुमान जी को देखिए, कितना बल, कितना ज्ञान था उनमें, लेकिन सारा अहंकार मिटाकर सिर्फ राम की सेवा की, और इसी समर्पण ने उन्हें राम के भाइयों से भी मतलब ऊंचा स्थान दिला दिया। ऐसे ही वाल्मीकि का जीवन कब बदला? जब नारद जी से मिले, अहंकार गला, तब जाकर वो महर्षि बने। तो उपासना का जो सार है वो है अहंकार को गला देना, ईश्वर को पूरी तरह समर्पित हो जाना और फिर उसकी बनाई इस सृष्टि की सेवा करना निस्वार्थ भाव से।
तो संक्षेप में कहें तो वंदनीय माताजी के अनुसार उपासना आत्मा की वो गहरी प्यास बुझाने का तरीका है, और ये प्यास बुझती है ईश्वर की समीपता से, जिसका रास्ता है पूरा समर्पण और अहंकार का त्याग। और इससे होता क्या है, अंततः भक्त ईश्वर का ही स्वरूप बन सकता है।
जी, और चलते चलते एक विचार जो माताजी हमारे लिए छोड़ जाती हैं सोचने के लिए, कि ईश्वर ने हमें ये जो अद्भुत मानव जीवन दिया है और ये संसार रूपी बगीचा सौंपा है, तो हम इस धरोहर का, इस अमानत का ध्यान कैसे रख रहे हैं? क्या हम सच्ची उपासना यानी सेवा और समर्पण के जरिए इस बगीचे को, इस जीवन को और सुंदर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।